एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और इस ज्ञान गोष्ठी में हाँ, हम सब मिलकर गोता लगाएंगे आज के एक बेहद दिलचस्प विषय में।
मैं हूँ आपकी एक मेजबान और मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस विषय की गहराइयों तक पहुँचे आसान और दिलचस्प तरीके से।
और मैं हूँ दूसरा मेजबान जो ये देखेगा कि हम सिर्फ सतह पर ना तैरें बल्कि कुछ कीमती मोती भी निकालना है।
तो आज हम बात करने वाले हैं डैरेन सी ब्राभम की किताब क्राउड सोर्सिंग पर। सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा नया या तकनीकी लगे, पर यकीन मानिए ये हमारी आज की डिजिटल दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा है।
हाँ बिल्कुल, मतलब हम सब आजकल इंटरनेट से जुड़े हैं और यहीं पर आप कह सकते हैं जन्म लेती है भीड़ की ताकत, या जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं।
हाँ।
कैसे हजारों लाखों लोग मिलकर बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं, यही क्राउडसोर्सिंग का मतलब मूल फंडा है।
और ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, समाज सेवी संस्थाएं, यहाँ तक कि सरकारें भी ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ऑनलाइन मौजूद लोगों की इस सामूहिक बुद्धि, उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए।
सही,
ब्राभम की किताब इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद करती है, और वो भी सतही तौर पर नहीं बल्कि पूरी गहराई और विश्लेषण के साथ।
तो फिर देर किस बात की। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डैरेन सी ब्राभम हैं कौन और क्यों उनकी बात इस विषय पर इतनी मायने रखती है।
हाँ, तो डैरेन सी ब्राभम अमरीका की जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, मतलब USC, वहाँ के एनेनबर्ग स्कूल फॉर कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें क्राउडसोर्सिंग के फील्ड में एक बड़ा नाम माना जाता है, एक ऐसे रिसर्चर जिन्होंने इस विषय की नींव रखने में आप कह सकते हैं अहम भूमिका निभाई है।
और उनकी खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं सुनाते, वो अकादमिक बारीकी से, मतलब पूरी जांच पड़ताल और सबूतों के साथ इस विषय का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी, मैनेजमेंट के सिद्धांत और असल दुनिया के डेटा, जिसे एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके क्राउडसोर्सिंग को समझने का एक ठोस ढांचा तैयार किया है।
और दिलचस्प बात यह है कि वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने इस उभरते हुए कॉन्सेप्ट को समझा, पढ़ा और फिर डिफाइन किया। उनकी PhD भी इसी विषय पर थी, तो उनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, उन्हें जमीनी हकीकत की भी गहरी समझ है।
सही कहा। और उनका नजरिया सिर्फ थ्योरी तक ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है। वो न सिर्फ मॉडल बनाते हैं बल्कि कंपनियों और संस्थाओं को ये भी बताते हैं कि इन मॉडल्स को असल में लागू कैसे करें।
अच्छा।
उनके पास एकेडमिक रिसर्च के साथ साथ डिजिटल मीडिया और वेब डेवलपमेंट का अनुभव भी है, तो वो दोनों दुनियाओं को कह सकते हैं समझते हैं।
एक और अहम बात, ब्राभम उन मुद्दों पर भी उंगली रखते हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती, जैसे क्राउडसोर्सिंग से जुड़े नैतिक सवाल या काम करने वालों के अधिकार। इस पहलू पर हम आगे और बात करेंगे।
हाँ, ये जरूरी है।
और ये किताब MIT प्रेस की प्रतिष्ठित एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है, जो अपने आप में इसकी अहमियत बताता है।
चलिए अब आते हैं किताब के दिल पर। आखिर ये किताब कहना क्या चाहती है, इसका सार क्या है?
देखिए, अक्सर लोग क्राउडसोर्सिंग को बस एक चलता फिरता शब्द, एक बज़वर्ड समझ लेते हैं, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल।
ये किताब इसी सोच को तोड़ती है। ब्राभम कहते हैं कि क्राउडसोर्सिंग असल में सोच समझकर बनाया गया एक खास संरचना वाला और बहुत शक्तिशाली तरीका है समस्याओं को सुलझाने का। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाल कर सकता है।
तो इसका मकसद क्राउडसोर्सिंग के इर्द गिर्द जो धुंध है उसे साफ करना है।
ये किताब बताती है कि ये असल में है क्या, कितने तरह का होता है और सबसे जरूरी, इसे कामयाब बनाने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए।
ये मानती है कि भीड़ की ताकत कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अपने आप चल जाए। इसे सही प्लानिंग, सही औजारों और सोच समझकर बनाई गई कम्युनिटी मैनेजमेंट से ही हासिल किया जा सकता है।
ब्राभम का सबसे बड़ा तर्क, मतलब जो उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि क्राउडसोर्सिंग की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि आपकी समस्या किस तरह की है।
हाँ।
और आप उसे हल करने के लिए कौन सा क्राउडसोर्सिंग तरीका चुन रहे हैं।
वाह।
इन दोनों के बीच सही तालमेल होना बेहद जरूरी है।
सही तालमेल।
हाँ, सफलता तुक्के से नहीं मिलती बल्कि सही योजना और मैनेजमेंट से मिलती है। ये थोड़ा शतरंज की बिसात बिछाने जैसा है, हर मोहरा सही जगह पर सही चाल के साथ।
तो ये किताब उस बड़े सवाल का जवाब देती है कि कंपनियां या संस्थाएं कैसे शब्द के मुंह से आगे बढ़कर ऑनलाइन लोगों की बुद्धि, रचनात्मकता और मेहनत का सही इस्तेमाल करके अपनी खास समस्याओं को असरदार तरीके से और हाँ नैतिक रूप से हल कर सकती हैं।
और उनका मूल विचार ये है कि कामयाब क्राउडसोर्सिंग के लिए चार चीजों का सही तालमेल और डिजाइन जरूरी है। सही लोग यानी भीड़, काम करने का सही तरीका यानी प्रक्रिया, सही टेक्नोलॉजी यानी मंच और साफ लक्ष्य यानी उद्देश्य। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपको ऐसे हुनर और नज़रिए तक पहुंचा सकता है जो शायद आपके संगठन के अंदर मौजूद ही ना हो।
तो ये तो हुई मोटी मोटी बात। अब जरा किताब के अंदर झांकते हैं। ब्रैबम ने इसे अलग अलग अध्यायों में बांटा है। पहले अध्याय में वो पूछते हैं क्राउडसोर्सिंग आखिर है क्या।
हाँ, ये नींव रखता है। यहाँ ब्रैबम 2006 के एक मशहूर लेख से आगे बढ़कर ज्यादा सटीक परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि क्राउडसोर्सिंग एक ऑनलाइन तरीका है जिससे बिखरे हुए लोगों की मदद से किसी समस्या का हल ढूंढा जाता है या कुछ बनाया जाता है।
अच्छा।
इसमें किसी खास मकसद के लिए ऑनलाइन समुदायों की सामूहिक बुद्धि का इस्तेमाल होता है।
और इसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं, एक संगठन जिसके पास कोई समस्या या काम है, एक भीड़ जिसके पास उस काम को करने का हुनर या ज्ञान है, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इन दोनों को जोड़ता है।
यहाँ ब्रैबम ये भी साफ करते हैं कि क्राउडसोर्सिंग और मिलती जुलती चीजों में क्या फर्क है। जैसे ये आउटसोर्सिंग नहीं है।
हाँ, बोला गया।
जहाँ आप काम किसी एक कंपनी या व्यक्ति को सौंप देते हैं। ये ओपन इनोवेशन से भी अलग है, जो बाहर से नए आइडिया लेने का एक ज्यादा खुला तरीका है। और ये यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, से भी अलग है, क्योंकि क्राउडसोर्सिंग में आमतौर पर संगठन एक खास समस्या सामने रखता है।
सही।
कामयाब क्राउडसोर्सिंग के लिए एक साफ समस्या, एक ऑनलाइन समुदाय और दोनों तरफ के लिए कुछ न कुछ आपसी फायदे, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट का होना जरूरी है।
तो ये तो हुई परिभाषा की बात, लेकिन ब्रैबम का असली कमाल मेरे हिसाब से अगले अध्याय में दिखता है, जहां वो बताते हैं कि क्राउडसोर्सिंग असल में कितने अलग अलग तरह की होती है।
ये किताब का सबसे अहम हिस्सा है क्राउडसोर्सिंग के प्रकारों का वर्गीकरण, या जिसे वो टाइपोलॉजी कहते हैं।
यहाँ वो कहते हैं कि सारी क्राउडसोर्सिंग एक जैसी नहीं होती।
और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही है कि समस्या किसी और तरह की होती है और तरीका कोई और अपना लेते हैं।
ब्रैबम कहते हैं अगर आपने अपनी समस्या के लिए गलत औजार चुना तो समझ लीजिए कि आपने शुरुआत में ही हार मान ली।
बिल्कुल।
उन्होंने समस्या की प्रकृति के आधार पर चार मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला है ज्ञान खोज और प्रबंधन, नॉलेज डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट।
अच्छा।
ये तब काम आता है जब जानकारी बिखरी हुई हो और उसे इकट्ठा करके व्यवस्थित करना हो। सबसे बढ़िया उदाहरण विकिपीडिया।
हाँ, जाहिर है।
जहां लाखों लोग मिलकर ज्ञान का भंडार बना रहे हैं, या फिर गैलेक्सी जू जैसा प्रोजेक्ट जहां आम लोग घर बैठे अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखकर आकाशगंगाओं को पहचानने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं।
वाह, अच्छा।
दूसरा प्रकार
है प्रसारण खोज, ब्रॉडकास्ट सर्च। सोचिए कोई बहुत मुश्किल वैज्ञानिक या तकनीकी पहेली है। आपको पता है कि इसका कोई ना कोई हल तो है, पर कैसे निकलेगा ये नहीं पता। तब आप उस समस्या को इंटरनेट पर फैला देते हैं इस उम्मीद में कि दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई विशेषज्ञ इसका हल निकाल दे। इनोसेंटिव नाम का प्लेटफॉर्म यही करता है। कंपनियां अपनी मुश्किल R&D समस्याएं पोस्ट करती हैं और सही हल देने वाले को इनाम मिलता है।
नेटफ्लिक्स ने भी कुछ ऐसा किया था शायद।
हाँ बिल्कुल, नेटफ्लिक्स ने भी ऐसा ही किया था अपने सुझाव देने वाले सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा खासा इनाम रखा था उन्होंने।
अच्छा, और तीसरा प्रकार थोड़ा अलग है, सहकर्मी परीक्षित रचनात्मक उत्पादन, पीयर वेटेड क्रिएटिव प्रोडक्शन। ये तब काम आता है जब मामला क्रिएटिविटी या पसंद नापसंद का हो।
जैसे
आपको अपनी कंपनी के लिए नया लोगो चाहिए या कोई विज्ञापन बनाना है। यहां सबसे अच्छा क्या है ये बताना मुश्किल है, ये व्यक्तिपरक होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें दो कदम होते हैं, पहले लोग अपने आइडिया या डिजाइन भेजते हैं, फिर वही लोग वोट करके चुनते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है।
अच्छा, यानी भीड़ ही बना रही है और भीड़ ही चुन रही है।
बिल्कुल। थ्रेडलेस टी शर्ट कंपनी इसका क्लासिक उदाहरण है। लोग डिजाइन बनाते हैं, लोग ही वोट करते हैं और सबसे ज्यादा वोट वाला डिजाइन बनता है। ये एक तीर से दो शिकार है, आपको डिजाइन भी मिल गया और ये भी पता चल गया कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है।
ये तो बढ़िया है।
और चौथा
प्रकार है वितरित मानव बुद्धिमत्ता कार्य, डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस टास्किंग, जिसे शॉर्ट में DHIT कहते हैं।
ये नाम थोड़ा भारी है। हाँ, सुनने में मशीनी लगता है, लेकिन है बहुत काम का। इसका इस्तेमाल तब होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे काम करने हों, जिनमें इंसान की थोड़ी सी समझ की जरूरत पड़ती है और जो कंप्यूटर आसानी से नहीं कर सकते।
जैसे कि?
जैसे हजारों तस्वीरों में पहचानना कि किसमें बिल्ली है, या किसी ऑडियो को सुनकर लिखना। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हजारों लोग थोड़े थोड़े पैसे लेकर उन कामों को करते हैं। अमेज़न मैकेनिकल तुर्क (M-Turk) इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
अच्छा, तो ये चार प्रकार समझना वाकई क्राउडसोर्सिंग को समझने की कुंजी है।
ठीक है, तो ये प्रकार तो समझ आ गए, लेकिन कोई संगठन ये कैसे तय करे कि उसे क्राउडसोर्सिंग करनी भी चाहिए या नहीं? अगला अध्याय इसी पर है, क्राउडसोर्सिंग का उपयोग कब करें।
हाँ, यहाँ ब्रैहम सिद्धांत से हटकर प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो साफ कहते हैं कि क्राउडसोर्सिंग हर मर्ज की दवा नहीं है। इसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए।
पहला, क्या आपकी समस्या इसके लायक है? क्या आप उसे साफ साफ शब्दों में बता सकते हैं? क्या वो उन चार प्रकारों में से किसी एक में फिट बैठती है? कहीं वो बहुत ज्यादा उलझी हुई या गोपनीय तो नहीं?
दूसरा सवाल, क्या आपके पास सही भीड़ है? यानी आपको किस तरह के हुनर वाले लोगों की जरूरत है? वो लोग आपको ऑनलाइन मिलेंगे कहाँ? और सबसे जरूरी, वो आपके लिए काम क्यों करेंगे? उनकी प्रेरणा क्या होगी?
हाँ, ये प्रेरणा वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। ब्रैहम चेताते हैं कि गलत प्रोत्साहन गलत लोगों को खींचकर लाएगा। मान लीजिए आपको कोई मुश्किल वैज्ञानिक हल चाहिए और आप इनाम बहुत छोटा रखें, तो शायद आपको सही विशेषज्ञ मिले ही ना।
और तीसरा, क्या आपका संगठन इसके लिए तैयार है? क्या आपके पास जरूरी संसाधन हैं, जैसे समय, पैसा, इस काम को संभालने वाले कर्मचारी? क्या आपकी कंपनी या संस्था का माहौल ऐसा है कि वो बाहर से आए विचारों को अपनाने को तैयार है?
सही।
ब्रैहम जोर देते हैं कि क्राउडसोर्सिंग अपने आप नहीं हो जाती, इसमें अच्छा खासा मैनेजमेंट और मेहनत लगती है।
मान लीजिए इन सवालों के जवाब हाँ में हैं। अब इसे लागू कैसे करें? अगला अध्याय इसी पर है, क्राउडसोर्सिंग प्रक्रिया का प्रबंधन।
इसमें कुछ अहम कदम हैं। पहला, सिर्फ समस्या पोस्ट कर देने से भीड़ नहीं आ जाती। आपको समुदाय बनाना और उसे पोषित करना पड़ता है। या तो आप मौजूदा ऑनलाइन समुदायों तक पहुंचे, या फिर अपने काम के इर्द गिर्द एक नया समुदाय खड़ा करें।
दूसरा, आपका ओपन कॉल यानी काम का न्योता एकदम साफ होना चाहिए। लोगों को ठीक ठीक पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, नियम क्या हैं, इनाम क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं।
तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, लोगों की प्रेरणा को समझना, वो क्यों हिस्सा लें। ब्रैहम कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
हाँ, जिसे भारी प्रेरणा कहते हैं।
हाँ, कई बार लोग सीखते हैं, उन्हें मजा आता है, वो किसी समुदाय से जुड़ना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि वो किसी अच्छे काम में हाथ बटा रहे हैं। ये सब अंदरूनी प्रेरणाएं हैं। आपको सही संतुलन बनाना होगा।
और चौथा, संगठन को चुपचाप तमाशा नहीं देखना है, उसे सक्रिय रहना होगा। लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे, हौसला बढ़ाना होगा और उन्हें महसूस कराना होगा कि उनके काम की कद्र है। समुदाय को नजरअंदाज करना क्राउडसोर्सिंग की विफलता का एक आम कारण है।
लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है ना? मुझे लगता है कि इसमें कुछ चुनौतियां और नैतिक सवाल भी जुड़े होंगे।
बिल्कुल सही पकड़ा। और ब्रैहम इन मुश्किल सवालों से कतराते नहीं है। अगला अध्याय इसी पर है, चुनौतियां और नैतिक विचार। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कहते हैं कि क्राउडसोर्सिंग के कुछ अंधेरे कोने भी हैं।
जैसे कि?
जैसे मेहनत का शोषण होने का खतरा, खासकर वो DHIT वाले कामों में, जैसे M-Turk, जहां लोगों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। कुछ लोग तो इसे डिजिटल स्वेटशॉप भी कहते हैं।
ओह।
या फिर क्रिएटिव प्रतियोगिताओं में, जहां हजारों लोग मुफ्त में मेहनत करते हैं और इनाम सिर्फ एक को मिलता है। क्या ये सही है? ये सवाल उठता है।
ये तो सोचने वाली बात है। और क्या मुद्दे हैं?
बौद्धिक संपदा का सवाल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो आइडिया या डिजाइन लोग जमा कर रहे हैं उसका मालिक कौन होगा। इसके लिए एकदम साफ नियम और शर्तें होनी चाहिए, वरना बाद में झगड़े हो सकते हैं। फिर गुणवत्ता का सवाल, आप अनजान लोगों के काम पे भरोसा कैसे करेंगे? इसके लिए भी तरीके बनाने पड़ते हैं, जैसे लोगों की रेटिंग या एक दूसरे के काम की समीक्षा, पेयर रिव्यू वगैरह।
और एक बात और जो मेरे मन में आ रही है, क्या इसमें सब लोग हिस्सा ले पाते हैं? जिनके पास इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं है, उनका क्या?
आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। क्राउडसोर्सिंग में भाग लेने के लिए इंटरनेट और कुछ हद तक तकनीकी समझ जरूरी है, जो दुनिया की एक बड़ी आबादी को इससे बाहर कर देती है। ब्रैहम इन सभी नैतिक जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं।
तो भविष्य क्या है इसका? क्या ये ऐसे ही चलेगा या इसमें कुछ बदलाव आएंगे? आखिरी अध्याय इसी पर नजर डालते हैं ना?
हाँ, ब्राबहम का मानना है कि क्राउडसोर्सिंग अब और ज्यादा मुख्य धारा का हिस्सा बनेगी, सामान्य व्यवसायिक कामों में और गहराई से जुड़ेगी और नए नए क्षेत्रों में फैलेगी, जैसे नागरिक जुड़ाव, सिविक एंगेजमेंट।
वो कैसे?
जैसे सरकारें या शहर प्रशासन लोगों से उनकी राय ले सकते हैं या उनसे अपने इलाके की समस्याएं रिपोर्ट करवा सकते हैं, जैसे फिक्स माई स्ट्रीट ऐप है।
अच्छा।
और टेक्नोलॉजी के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ इसका रिश्ता और गहरा होगा। AI को सिखाने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है और ये डेटा तैयार करवाने में भीड़, खासकर DHIT के जरिए बहुत काम आ रही है। क्राउड फंडिंग, जहाँ भीड़ पैसा लगाती है, वो भी इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। शायद हमें ऐसे मिले जुले मॉडल देखने को मिले और हो सकता है कि बड़े सबके लिए खुले प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ खास तरह के हुनर या उद्योगों के लिए छोटे विशेष प्लेटफॉर्म ज्यादा बने, नीच प्लेटफॉर्म्स।
वाह, तो ये थी किताब की एक तरह से यात्रा। अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे लिए तो पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि क्राउडसोर्सिंग कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि सोच समझ कर अपनाने वाली एक रणनीति है।
बिल्कुल।
इसमें सफलता के लिए प्लानिंग और सही तालमेल चाहिए, सिर्फ किस्मत नहीं। इसे मैनेजमेंट के एक गंभीर विषय की तरह देखना होगा।
मेरे लिए दूसरी सबसे अहम बात है वो चार प्रकारों वाला वर्गीकरण,
टाइपोलॉजी।
ये समझना कि आपकी समस्या किस खांचे में फिट होती है और उसके लिए सही औजार चुनना, ये कामयाबी की कुंजी है।
हाँ,
एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता, जैसे आप किसी वैज्ञानिक खोज के लिए क्रिएटिव कॉन्टेस्ट नहीं करा सकते।
तीसरा, संगठन और भीड़ का रिश्ता। ये सिर्फ काम लेना और देना नहीं है, आपको समुदाय के साथ एक रिश्ता बनाना होगा, उसे सींचना होगा, उनसे खुलकर बात करनी होगी, उनका सम्मान करना होगा, उन्हें सही मुआवजा देना होगा, चाहे वो पैसे के रूप में हो या किसी और तरह से।
हाँ, उन्हें सिर्फ सस्ता साधन नहीं बल्कि भागीदार समझना होगा।
बिल्कुल। चौथा, लोगों की प्रेरणा को समझना बहुत जरूरी है। लोग क्यों जुड़ते हैं? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
सही।
कई बार सीखने की इच्छा, कुछ मजेदार करने का मौका, समाज से जुड़ने का एहसास या किसी अच्छे मकसद के लिए काम करना ज्यादा मायने रखता है। भारत में ही देखिए कितने सारे सामुदायिक काम लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी या समाज सेवा के लिए करते हैं।
हाँ, ये बात तो है, सही प्रेरणा को समझना और उसे जगाना जरूरी है।
और पांचवा, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, नैतिक जिम्मेदारी। क्या हम लोगों का शोषण तो नहीं कर रहे? क्या हम उनके काम का सही मूल्य दे रहे हैं? इन मुश्किल सवालों का सामना करना ही होगा।
बिल्कुल। क्राउडसोर्सिंग लंबे समय तक तभी टिक पाएगी जब वो नैतिक आधार पर खड़ी होगी।
शायद छठा बिंदु ये कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सहायक है, अपने आप में समाधान नहीं।
हाँ, माध्यम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इसे संभव बनाते हैं, लेकिन कामयाबी तो इंसानी समझ, समुदाय की भावना और समस्या को सही ढंग से हल करने पर ही निर्भर करती है।
इस किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम ब्राबहम के कुछ विचारों को अपने शब्दों में कहें, पहला तो यही कि क्राउडसोर्सिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी अनजान भीड़ को काम सौंप दें। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत आप किसी खास समस्या को हल करने के लिए ऑनलाइन मौजूद एक खास समुदाय से जुड़ते हैं और उसे बनाते हैं।
हाँ, ये बात क्राउडसोर्सिंग को लेकर जो धुंधलापन है उसे साफ करती है। ये रणनीति योजना और समुदाय बनाने पर जोर देती है, न कि सिर्फ चलो इंटरनेट से पूछ लेते हैं वाली सोच पर।
दूसरा अहम विचार जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, क्राउडसोर्सिंग में सबसे आम गलती होती है समस्या के प्रकार और उसे हल करने के तरीके के बीच का बेमेल होना।
हाँ,
आप क्रिएटिव कॉन्टेस्ट से वैज्ञानिक समस्या हल नहीं कर सकते और ना ही छोटे मोटे काम करवाकर कोई बड़ा नया आविष्कार कर सकते हैं।
ये सीधे सीधे उन चार प्रकारों के महत्व को बताता है। सही समस्या के लिए सही तरीका चुनना ही सफलता का पहला कदम है। ये बात जितनी बार दोहराई जाए कम है।
तीसरा विचार नैतिकता से जुड़ा है। किसी संगठन की नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ नियम और शर्तें लिखा देने से खत्म नहीं होती। ये जिम्मेदारी उस भीड़ के साथ एक निष्पक्ष, सम्मानजनक और दोनों के लिए फायदेमंद रिश्ता बनाने तक जाती है, क्योंकि उसी भीड़ की मेहनत और बुद्धि ही असली मूल्य पैदा करती है।
ये एक तरह का आह्वान है कि भीड़ को सिर्फ सस्ता संसाधन न समझें बल्कि उन्हें भागीदार माने। ये आज के डिजिटल युग में कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है।
और चौथा, प्रेरणा पर। भीड़ की प्रेरणा ही क्राउडसोर्सिंग रूपी इंजन का ईंधन है।
सही कहा।
अगर आप ये नहीं समझते कि आपके समुदाय को क्या चीज प्रेरित करती है, चाहे वो पैसा हो, जुनून हो, पहचान हो या मजा हो, तो आपका इंजन बंद पड़ जाएगा।
ये बात इंसान के मनोविज्ञान को समझने के महत्व को दिखाती है। सही प्रेरणा जगाने वाला सिस्टम बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि टेक्नोलॉजी बनाना।
ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असर जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई बिजनेस है या कोई एनजीओ या हम जैसे आम लोग।
व्यवसायों के लिए तो कई रास्ते हैं। नई खोज या R&D के लिए वो मुश्किल तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए ब्रॉडकास्ट सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इनोसेंटिव करता है। मार्केटिंग या डिजाइन के लिए नया लोगो या विज्ञापन बनवाने के लिए पीयर वेटेड क्रिएटिव प्रोडक्शन का तरीका अपना सकते हैं, जैसा थ्रेडलेस करता है। इससे आइडिया भी मिलते हैं और पता भी चलता है कि बाजार को क्या पसंद है।
और डेटा वाले कामों के लिए, जैसे बहुत सारे ऑडियो को लिखवाना हो या तस्वीरों को छांटना हो,
उसके लिए ढेर प्लेटफॉर्म्स जैसे एम्टर काम आ सकते हैं। इससे उनके अपने कर्मचारी ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं।
और गैर लाभकारी संस्थाओं या सरकारी एजेंसियों के लिए,
उनके लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। नागरिकों को जोड़ने के लिए, जैसे किसी नए पार्क के डिजाइन पर लोगों से सुझाव मांगना, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जैसे लोगों से कहना कि वो अपने इलाके में प्रदूषण या किसी खास तरह के कीड़े मकोड़े दिखने पर रिपोर्ट करें।
अच्छा,
यहाँ तक कि नीतियाँ बनाने में भी, किसी कानून के मसौदे पर जनता की राय लेना।
और हम जैसे आम लोगों के लिए,
हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई हुनर है, जैसे डिजाइनिंग, लिखना, अनुवाद करना, तो हम इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करके पैसे कमा सकते हैं, अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं,
पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
हाँ, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और नहीं तो कम से कम हम ज्यादा जागरूक बन सकते हैं जब हम वेज जैसा मैप ऐप या डुओलिंगो जैसा भाषा सिखाने वाला ऐप इस्तेमाल करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इनके पीछे भी क्राउडसोर्सिंग काम कर रही है।
हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी।
हम सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं हैं, हम अनजाने में ही सही उस सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद भी कर रहे हैं।
शायद सबसे बड़ा बदलाव सोच में लाने की जरूरत है। किसी भी समस्या का सामना करते हुए ये सवाल पूछना, क्या कोई भीड़ इस समस्या को बेहतर, तेजी से या ज्यादा रचनात्मक तरीके से हल करने में हमारी मदद कर सकती है?
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए तो यही कि क्राउडसोर्सिंग सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान और कला है। ये एक अनुशासित रणनीति है, और ब्रैंडबैम का वो 4 प्रकारों वाला फ्रेमवर्क उसने मेरे लिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर दिया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टूल लगा मुझे।
और मेरे लिए सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू था नैतिकता और प्रेरणा का। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसे का खेल नहीं है, ये इंसानों, समुदाय, आपसी सम्मान और जिम्मेदारी से जुड़ा है। कि इस भीड़ में हम जैसे असली इंसान ही शामिल हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।